एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कहे कुछ अगर तो पत्थर भी कह उठेंगे, जो तुम ना कहे कुछ अगर तो पत्थर भी कह उठेंगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया।
जो इतना खुदा ने किया हम सब के खातिर जा, तो फिर क्यों यूं खामोशियां और लब से गए हैं यहाँ, तो फिर क्यों यूं खामोशियां और लब से गए हैं यहाँ। जो अब भी ना तुम कुछ कहे तो नजारे भी कह उठेंगे, जो अब भी ना तुम कुछ कहे तो नजारे भी कह उठेंगे। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ये आवाज है वक्त की, उठो और तैयार हो, ये आवाज है वक्त की, उठो और तैयार हो, ये आवाज है वक्त की, उठो किया क्या हर एक इंसान को, बताओ खुदा ने किया क्या हर एक इंसान को। जो अब भी ना तुम कुछ कहे तो परिंदे भी कह उठेंगे, जो अब भी ना तुम कुछ कहे तो परिंदे भी कह उठेंगे। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जो तुम ना कहे कुछ अगर तो पत्थर भी कह उठेंगे, जो तुम ना कहे कुछ अगर तो पत्थर भी कह उठेंगे। हालेलुया।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरा वचन को समझने के लिए मदद कर पिता। हमें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि हम तेरे राह में चल सके और हमें तेरे राज के लिए तैयार कर पिता। मेरे श्रोताओं के संग हो, जो तेरे वचनों को सुनते हैं उन्हें समझने के लिए मदद कर ताकि वे तेरे सच्चाई के रास्ता में चल सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है पवित्र आत्मा के उपहार। स्वर्ग आरोहण से ठीक पहले यीशु ने जो शब्द बोले थे वे इतिहास को बदलने वाले थे। तुम सारे जगत में जाकर उसने चेलों को आदेश दिया, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह यीशु का वचन हम मरकुस 16 का 15 में पाते हैं। सारे जगत को, सारी सृष्टि को, शिष्यों ने सोचा होगा कि यह एक असंभव कार्य है। मसीह ने उनकी लाचारी को भांपते हुए उन्हें यरूशलेम ना छोड़ने का निर्देश दिया, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। फिर उसने उन्हें आश्वासन दिया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 का 4 और 8 में। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने प्रार्थना में बहुत समय बिताया। सद्भाव और नम्रता ने उस कलह और ईर्ष्या का स्थान ले लिया जिसने यीशु के साथ बिताया उनका अधिकांश समय खराब कर दिया था। शिष्य परिवर्तित हो गए थे। मसीह के साथ उनका घनिष्ठ संबंध और परिणामी एकता पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए आवश्यक तैयारी थी। जिस प्रकार यीशु ने अपनी सेवकाई के योग्य बनने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक विशेष अभिषेक प्राप्त किया, जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10:38 में, उसी प्रकार शिष्यों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया, जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:5 में, ताकि वे गवाही दे सके। परिणाम उत्तेजक था। जिस दिन उन्होंने पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त किया, उन्होंने 3,000 व्यक्तियों को बपतिस्मा दिया। इसे हम पाते हैं प्रेरितों के काम 2:31 में। पवित्र आत्मा के उपहार क्या है, आइए हम इसे विस्तार से देखें। मसीह ने एक दृष्टांत के साथ पवित्र आत्मा के उपहारों का वर्णन किया। यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। यह हम पढ़ते हैं मत्ती 25:14-15 में। परदेश की यात्रा करने वाला व्यक्ति मसीह के जाने का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य के अपने दास उसके अनुयायी हैं जो दाम देकर मोल लिए गए हैं। 1 कुरिन्थियों 6:20 मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा 1 पत्रस 1:19 मसीह ने उन्हें सेवा के लिए छुड़ाया ताकि वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 2 कुरिन्थियों 5:15 में हम यह पाते हैं। मसीह ने प्रत्येक दास को उसकी योग्यता के अनुसार संपत्ति दी और हर एक को उसका काम जता दिया। 13:34 अन्य उपहारों और क्षमताओं के साथ ये संपत्ति आत्मा द्वारा दिए गए विशेष उपहारों का प्रतिनिधित्व करती है। एक विशेष अर्थ में मसीह ने ये आत्मिक उपहार अपनी कलीसिया को पेंतिकुस्त के दिन दिए। जब वह ऊंचे पर चढ़ा, पौलुस ने कहा उसने मनुष्यों को उपहार दिए। इस प्रकार हम में से हर एक को मसीह के उपहार के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इफिसियों 4:8-7 पवित्र आत्मा वह माध्यम है जो इन उपहारों को जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। 1 कुरिन्थियों 12:11 जो कलीसिया को अपना नियत कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। आत्मिक उपहारों का उद्देश्य क्या है, आइए हम इसे आगे सीखें। पवित्र आत्मा एक सदस्य को एक विशेष क्षमता देता है जिससे वह कलीसिया की उसके दिव्य विशेष कार्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। कलीसिया के भीतर सद्भाव होनी चाहिए। कुरिन्थस की कलीसिया के पास किसी भी आत्मिक उपहार की कमी नहीं थी। यह हम पाते हैं 1 कुरिन्थियों 1:4-7 में। दुर्भाग्य से वे बच्चों की तरह झगड़ते थे कि कौन से उपहार सबसे महत्वपूर्ण थे। उनकी कलीसिया में विभाजन के बारे में चिंतित पौलुस ने कुरिन्थियों को इन उपहारों की वास्तविक प्रकृति के बारे में लिखा और वे किस प्रकार कार्य करने के लिए थे। आध्यात्मिक उपहार उसने समझाया अनुग्रह के उपहार हैं। उसी आत्मा से कई प्रकार के उपहार आते हैं जो कई प्रकार की सेवाएं और कई प्रकार के प्रभावशाली कार्यों की ओर ले जाता है। परंतु पौलुस ने बल देकर कहा कि परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 1 कुरिन्थियों 12:4-6 प्यारों, आत्मा प्रत्येक विश्वासी को उपहार वितरित करता है कलीसिया की आध्यात्मिक उन्नति या निर्माण के लिए। प्रभु के कार्य की आवश्यकताएं निर्धारित करती हैं कि आत्मा किसे और क्या वितरित करता है। सभी को समान उपहार नहीं मिलते हैं। पौलुस ने कहा कि आत्मा एक को बुद्धि देता है, दूसरे को ज्ञान देता है, किसी को विश्वास, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पद 11 में हम यह पढ़ते हैं, कलीसिया में एक उपहार के कार्य करने के लिए कृतज्ञता दाता को निर्देशित की जानी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति के लिए जो उपहार का प्रयोग करता है। और क्योंकि उपहार कलीसिया के लिए दिए जाते हैं, ना कि व्यक्ति के लिए, प्राप्तकर्ताओं को उपहारों को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आत्मा उपहारों को अपने अनुसार वितरित करता है जैसा वह ठीक देखता है। किसी भी उपहार को तुच्छ नहीं मानना चाहिए या तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। कलीसिया के किसी भी सदस्य को किसी विशेष नियुक्ति या कार्य के कारण अहंकार करने का अधिकार नहीं है, और ना ही किसी को नम्र पद दिए जाने के कारण हीन महसूस करना चाहिए। कार्य करने का नमूना मिलता है। पौलुस ने मानव शरीर का उपयोग उपहारों की विविधता में सामंजस्य को दर्शाने के लिए किया। शरीर में कई अंग होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक अनोखे तरीके से योगदान देता है। सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। पद 18। शरीर के किसी भी अंग को दूसरे से यह नहीं कहना चाहिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। वे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। पद 21-24। किसी भी अंग की विफलता पूरे शरीर को प्रभावित करती है। अगर शरीर में दिमाग नहीं होता तो पेट काम नहीं करता, और अगर पेट ना होता तो दिमाग बेकार होता। इसलिए कलीसिया का नुकसान होगा यदि कोई सदस्य, चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों ना हो, लापता हो। शरीर के कुछ अंग जो संरचनात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कोई हाथ या पैर के बिना कार्य कर सकता है, लेकिन जिगर, हृदय या फेफड़ों के बिना नहीं। हम आम तौर पर अपने चेहरे और हाथों को उजागर करते हैं, लेकिन हम शरीर के अन्य हिस्सों को लज्जा या शालीनता के लिए कपड़ों से ढक लेते हैं। छोटे उपहारों को हल्के में लेने की बजाय हमें उनके साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का स्वास्थ्य उन पर निर्भर करता है। प्यारो, परमेश्वर का इरादा कलीसिया में आध्यात्मिक उपहारों का वितरण, देह में फूट को रोकने और सद्भाव और निर्भरता की भावना पैदा करने के लिए था। इसलिए अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। पद 24-25 कहता है, इसलिए जब एक विश्वासी पीड़ित होता है तो पूरी कलीसिया को इसके बारे में जागरूक हो जाना चाहिए और दुख को कम करने में मदद करनी चाहिए। केवल तब ही जब इस व्यक्ति को पुनर्स्थापित किया जाता है कलीसिया का स्वास्थ्य सुरक्षित होता है। प्रत्येक उपहार के मूल्य पर चर्चा करने के बाद पौलुस ने उनमें से कई को सूचीबद्ध किया। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपहार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, पद 28। और इसे हम तुलना कर सकते हैं इफिसी 4:11 से भी, क्योंकि किसी भी सदस्य के पास सभी उपहार नहीं है, इसलिए उसने सभी को बड़े से बड़े उपहारों की इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया, पद 31, जो कलीसिया के लिए सबसे उपयोगी है। दूसरा है अपरिहार्य पहलू। हालांकि पवित्र आत्मा के उपहार अपने आप में पर्याप्त नहीं है, और भी सबसे उत्तम मार्ग है, पद 31। जबकि आत्मा के उपहार मसीह की वापसी पर समाप्त हो जाएंगे, आत्मा का फल अनंत है। इसमें प्रेम और शांति, भलाई और धार्मिकता का अनंत गुण है जो प्रेम अपने साथ लाता है। हम देख सकते हैं गलातियों 5:22-23 में और इफिसियों 5:9 में, जबकि भविष्यवाणी, भाषा और ज्ञान जाती रहेंगी, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है, कहता है 1 कुरिन्थियों 13:13। यह प्रेम जो परमेश्वर देता है, यूनानी में अगापे, एक आत्म बलिदान और देने वाला प्रेम है, 1 कुरिन्थियों 13:4-8 पढ़ें। यह उच्च प्रकार का प्रेम है जो उस व्यक्ति या वस्तु में मूल्य की किसी चीज को पहचानता है जिससे प्रेम किया जाता है। प्रेम जो सिद्धांत पर आधारित हो, भावना पर नहीं। प्रेम जो उसके प्रशंसनीय गुणों के प्रति सम्मान से उत्पन्न होता है। प्रेम रहित उपहार कलीसिया में भ्रम और विभाजन का कारण बनते हैं। इसलिए अधिक उत्कृष्ट तरीका यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आध्यात्मिक उपहार हैं, वह पूरी तरह से इस निस्वार्थ प्रेम को भी प्राप्त करे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रखो, कहता है 1 कुरिन्थियों 14:1। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीना है। पौलुस ने रोमियों को लिखी अपनी पत्री में भी आत्मिक उपहारों के बारे में बताया। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का आह्वान करते हुए रोमियो 11:36-12:2 में हम पढ़ते हैं, पौलुस ने फिर से शरीर के अंगों का उपयोग विविधता और फिर भी एकता को चित्रित करने के लिए किया है, जो उन विश्वासियों की विशेषता है जो कलीसिया में एक साथ जुड़े होते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि विश्वास और आध्यात्मिक उपहार दोनों का स्रोत परमेश्वर के अनुग्रह में है, विश्वासी विनम्र बने रहते हैं। एक विश्वासी को जितने अधिक उपहार दिए जाते हैं और जितना अधिक उसका आध्यात्मिक प्रभाव होता है, उतनी ही अधिक उसकी परमेश्वर पर निर्भरता होनी चाहिए। इस अध्याय में पौलुस ने निम्नलिखित उपहारों को सूचीबद्ध किया है, भविष्यवाणी, प्रेरित उच्चारण, उद्घोषण या उद्घोषणा, सेवाएं, सेवकाई, शिक्षण, उपदेश, प्रोत्साहन देना या साझा करना, नेतृत्व और दया या करुणा, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 12 में उसने मसीह धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत प्रेम के साथ अपनी चर्चा समाप्त की, पद 9। पत्रस ने आत्मिक उपहारों के विषय में सब बातों का अंत तुरंत होने वाले 1 पत्रस 4:7 की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया। समय की अविलंबता मजबूर करती है कि विश्वासियों को उपहारों का उपयोग करना चाहिए। जिसको जो वरदान मिला है उसने कहा, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे के लिए सेवा में लगाए। पद 10। पौलुस की तरह पत्रस ने सिखाया कि ये उपहार आत्मा महिमा के लिए नहीं है, बल्कि यह कि सब बातों में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। पद 11। उसने प्रेम को भी उपहारों के साथ जोड़ा। पद 8। पौलुस के आत्मिक उपहारों की तीसरी और अंतिम चर्चा में उसने विश्वासियों से आग्रह किया, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यह हम पढ़ते हैं इफिसियों 4:1-3 में। स्वयं मसीह ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को पादरी और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। अंत में मसीह में आत्मिक उपहार कलीसिया की एकता और समृद्धि दोनों लाते हैं। कलीसिया उन्नति और विकास को तभी महसूस कर सकती है जब वह प्रेम में इन उपहारों का उपयोग करती है। इसलिए आइए हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, जो हम उसके उपहारों को पाए हैं, इसे हम घमंड से नहीं परंतु कलीसिया की सेवा के लिए इस्तेमाल करें और इसे प्रेम से इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए तो हम सबों को बुलाया है और हम सबों को वरदान दिया है पिता कि हम एक दूसरे का सेवा करें और इसे हम प्रेम से सेवा करें। पिता परमेश्वर हमारे मनों में तेरा पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम तेरे रास्ता में चले और प्रेम से तेरे लोगों की सेवा करें।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।